ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ते के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता देवव्रत यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
सर्वोच्च न्यायालय ने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के हित से जुड़ा फैसला आया है। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि तीन तलाक में भी मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। तो कल जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 125 मुस्लिम महिला सहित सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है। इस अहम निर्णय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता देवव्रत यादव। यादव जी, आपका आज के शो में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए।
देवव्रत जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कल जो ये निर्णय आया है, इसे आप किस तरह देखते हैं?
जी, कल जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, इसमें सबसे पहले जो अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बहुत क्लियर ढंग से साफ कर दी है, वो ये है कि कानून हर धर्म पर एक बराबर से लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इस चीज में साफ कर दिया है कि अगर किसी हस्बैंड को अपनी जो वाइफ है उसको अगर गुजारा भत्ता देना पड़ रहा है तो वो कोई दान नहीं है, तो वो उस महिला का हक है। तो ये दो चीजें जो उससे सबसे बड़ी निकल के सामने आई, और तीसरी चीज उससे एक चीज ये भी निकल के सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ हाउस मेकर यानी घर बनाने वाले जो महिलाएं हैं उनके किरदार को भी इसमें जो है उजागर किया। उन्होंने उनकी कि वो कितनी जरूरी है समाज के लिए, उस चीज को भी उन्होंने काफी उस चीज पर जोर डाला है। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी जो है इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकल करके।
इस निर्णय के बाद से धारा 125 काफी चर्चा में, तो आप हमारे श्रोताओं को कृपया बताएं कि ये क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान है।
धारा 125 जो है हमारे पहले सीआरपीसी जो था उसमें थी, तो वो सबसे पहले तो मैं सबसे जरूरी बात बता दूं कि जब से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है जो कि नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, तो अब वो धारा 125 जो है वो अब धारा 144 हो जाएगी। तो जो चीज मैं बताऊंगा वो सेम ही चीज धारा 144 जो कि हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें आ गई है, क्योंकि अब सीआरपीसी ये पहले से केस पड़ा हुआ था तो इसलिए इसमें 125 पर जजमेंट आया। आगे से जो कुछ भी होगी इस चीज में कार्रवाई वो धारा 144 जो हमारी नागरिक सुरक्षा संहिता की है उसके अंदर होगी। तो उसमें यही लिखा हुआ है कि यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति जो कि मूलतः पुरुष ही होगा कि अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अवयस्क संतान का चाहे विवाहित हो या ना हो जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपनी धर्मज या संतान का जो विवाहित पुत्री नहीं है जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता के या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपने माता पिता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो इन लोगों के लिए जो है यहाँ पर गुजारा भत्ता और उसके भरण पोषण के लिए आदेश जो है मजिस्ट्रेट दे सकता है। उसमें कई और भी टेक्निकल चीजें हैं पर मोटी मोटी बात जो है वो 125 में यही है कि इन चार तरह के लोगों के लिए इसमें जो है प्रावधान बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है, अब ये महिलाओं के अधिकारों के मामले में कितना ऐतिहासिक है, आप इसको कैसे देखते हैं?
ये एक महिलाओं के अधिकारों के तरफ से अगर मैं इसमें बोलूं तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं की जंग ये आज से नहीं शुरू हुई है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा इसके इतिहास में ले जाता हूँ तो आप देखेंगे कि शाह बानो का केस जो आया था, तो शाह बानो के केस में उस समय जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ जो हमारे भारत के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में थे, तो उन्होंने उस समय भी 125 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कर दिया था कि अभी आज जो सिचुएशन आई है वो उन्होंने उस समय ही कर दी थी कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी 125 का संरक्षण प्राप्त होगा, उनको भी वही सारी, अदरवाइज मुस्लिम महिलाओं को जो था वो सिर्फ इद्दा पीरियड के समय तक ही उनको सिर्फ मेंटेनेंस मिलता था। जो इद्दा पीरियड जो होता है वो जनरली आप देखें तो 3 महीने का होता है, कई बार और भी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, तो मान के चलते हैं कि ज्यादातर केसेस में वो 3 महीने का होता है। री मैरिज करने के लिए जब तक कि युवती डिवोर्सडी वाइफ है वो रेडी नहीं हो जाती है तब तक वो इद्दा पीरियड, तो सिर्फ इद्दा पीरियड तक ही पहले हम मेंटेनेंस दे सकते थे। फिर जब शाह बानो का जजमेंट आया तो उसमें वो चीज क्लियर कर दी गई कि सिर्फ इद्दा पीरियड तक ही नहीं, क्योंकि महिलाओं को जीवन चलाने में काफी परेशानी आ रही थी, सिर्फ 3 महीने तक ही उनको सुरक्षा मिल रही थी। और सुरक्षा आप देखें सिर्फ आर्थिक सुरक्षा ही नहीं, उनको रहने की भी सुरक्षा उसमें दी जानी जरूरी थी, क्योंकि आप देखें 3 महीने के बाद अगर किसी महिला को घर रहने के लिए घर नहीं होगा और उसको पास आर्थिक भी कोई सुरक्षा नहीं होगी तो समाज में एक जो है उस चीज से काफी जो है आप देखें कि इमोरल एक्टिविटीज होने का खतरा रहता है। तो उन चीजों से बचाव के लिए हमेशा ही जो एक सोशल बेनिफिशियल लॉ ये 125 सीआरपीसी था जो उस समय सरकार थी, उस सरकार ने एक बदलाव कर दिया और 1986 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट करके जो है 1986 का एक कानून लेकर के आई। तो उस 1986 के जो कानून में है, जिसका जिक्र हमारे इस जजमेंट में भी हुआ है जो कि श्री नगरत्ना मैम और मैसी जी ने दिया है, उसमें उस 86 के जजमेंट में उसकी वजह से काफी शोर मच गया था जो शाहबानो का जजमेंट था, और काफी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सारे लोगों ने उस चीज की खिलाफत करी थी। तो सरकार ने अमेंड कर दिया उस चीज को, नया लॉ लाके जो 1986 का एक्ट था उसमें ये हो गया कि वो इद्दा पीरियड में ही सिर्फ जो है मेंटेनेंस मिले। फिर उसके बाद से तब से वो इद्दा पीरियड वाला ही 1986 की चीज ही चल रही थी, और मुस्लिम महिलाएं क्योंकि वो एक्ट जो था वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड कर गया था, तो इस वजह से वो 1986 वाली चीज लगातार लागू थी। पर अब वापस से जो है अब जाकर के हमें फिर से इद्दा पीरियड के बाद भी जो है मेंटेनेंस मिलती रही। तो ये एक छोटा सा इस चीज का इतिहास था।
अभी जैसे आपने शाहबानो मामले की बात करी तो उसने कैसे निजी अधिकारों की सही से व्याख्या की है, और ये भी बताएं कि किस तरह ये निर्णय जो है समानता के मुद्दे को संबोधित करता है।
ये निर्णय समानता के मुद्दे को ऐसे संबोधित करता है कि सबसे पहले तो आप देखें कि क्रिश्चियन मैरिड वुमेन या डिवोर्स वुमेन जो है अगर कोर्ट में जाती है, या किसी और धर्म के सिख ले लें, हिंदू ले लें, या कोई भी धर्म की, तो वो आप देखें कि 125 का जो सीआरपीसी का हमारा कानून है उसके अंडर उनको भरण पोषण और भत्ता मिल सकता, पर मुस्लिम महिलाओं को इस चीज का भरण पोषण, तो आप देखें कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को भी जो है इलीगल बता दिया, क्योंकि बाकी महिलाओं के आप देखें कि उनके कंपेरिजन में कि मुस्लिम महिलाओं का काफी ज्यादा इस चीज की वजह से शोषण हो रहा था, नंबर वन कि उनको अगर तलाक दे दिया गया तो उनके पास ना ही कोई रहने की रेजिडेंशियल कोई राइट नहीं रह जाता था, और ना ही उनके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी रह जाती। ये जो एक चीज थी वो सिर्फ धर्म की वजह से ही हो रही, उसका कोई और कानूनी कोई अड़चन नहीं उसमें से, सिर्फ धर्म की वजह से, क्योंकि वो पर्सनल लॉ मुस्लिम जो अपना पर्सनल लॉ है उसको उस चीज का हिस्सा मानते थे। पर अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आने के बाद से तो सारी मैरिड और डिवोर्स वुमेन्स जो किसी भी रिलीजन की हो वो सारी एक पैदान पर आके खड़ी हो गई, तो उनके बीच अब समानता है कम से कम इस चीज को लेकर के कि 125 सीआरपीसी भरण पोषण उन सभी को मिले।
आपने भी बात कही कि महिला अधिकारों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, तो खासतौर पर अगर बात करें मुस्लिम महिलाओं के लिए ये किस प्रकार के बदलाव लेके आएगा और किस तरह से संविधान में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करता है।
सबसे पहले अगर हम इसको इस चीज से भी जोड़ के देख सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे संविधान में प्राविधान है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हम एम करें, हम कोशिश करें कि एक पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड यही होता है कि कोई भी पर्सनल लॉ जो कि हर धर्म पर अलग अलग तरह से लागू होगा, वो जो आज की तारीख में लागू है वो अलग अलग धर्म, क्योंकि उसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी आती है, मतलब हर कानून और हर सेक्शन में जज को अलग अलग, क्योंकि महिला की स्थिति वही है, तलाक होने के बाद लगभग किसी भी धर्म की महिला हो उसकी स्थिति वही रहती है, पर वो अगर हिंदू है तो उसको अलग ढंग से कोर्ट ट्रीटमेंट देता है, उसको मुसलमान है तो उसको अलग ढंग से ट्रीटमेंट देता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह में भी एक अच्छी चीज होगी, क्योंकि अब महिला अगर उसका तलाक हो गया तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर जो लॉज आ जाएंगे तो उसमें सब एक समान हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और सारे कोर्ट जो है सबको एक तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो इस तरह से एक बहुत बड़ी समानता लाएगा महिलाओं के बीच में।
पीछे आपने बात करी कि शाहबानो का जब केस हुआ और ये जो आज उस समय पे भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत फैसला सुनाया गया था, तो सीआरपीसी की 125 धारा जो है और 1986 के जो अधिनियम है उनके प्रावधानों में क्या अंतर है?
सीआरपीसी 125 की धारा जो है, सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि सीआरपीसी 125 की धारा वो न्यूट्रल है, जेंडर न्यूट्रल है और रिलीजन न्यूट्रल भी है। जेंडर न्यूट्रल इसलिए कि आप चले अगर महिलाओं की जो जैसे इसमें सबसे पहला है, यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का जो भरण पोषण करने में, तो ये सिर्फ अगर एक पॉइंट को आप निकाल दें तो वो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं हो सकता, क्योंकि पत्नी जो है वो महिला ही हो सकती है अभी तक। सिर्फ इसके अलावा छोड़ के बाकी संतान आपकी जेंडर न्यूट्रल हो गई, वहां पर पुरुष संतान भी हो सकती है और स्त्री भी हो सकती है, तो ये माता पिता भी आपके दोनों में आ सकते हैं, तो वो सारा जेंडर न्यूट्रल है। पर ये जेंडर न्यूट्रल होने के साथ ही साथ ये रिलीजन न्यूट्रल भी है, इसमें कहीं क्योंकि 125 सीआरपीसी में ऐसा नहीं लिखा है कि ये हिंदुओं पर लागू होगा, मुसलमानों पर या किसी एक तरह के धर्म पर ही लागू होगा, तो ये नंबर एक कि ये रिलीजन न्यूट्रल और जेंडर न्यूट्रल है। पर जो आप 1986 एक्ट की बात करते हैं तो 1986 एक्ट जो है वो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया गया था, शाह बानो का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको ओवरराइड करने के लिए लाया गया। तो इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ नंबर एक तो मुस्लिम महिलाओं पर ही लागू था, और जो सीआरपीसी में बात होती है कि मेंटेनेंस आपको मिलती रहेगी, तो वो वाली चीज को 1986 एक्ट खत्म कर देता है, क्योंकि 1986 का जो अधिनियम है उसमें यह है कि वो मेंटेनेंस जो है वो सिर्फ सिर्फ आपको इद्दा पीरियड तक ही मिलेगी, और उसके बाद जो है अगर जैसे कि आप महिला उसके साथ साथ किसी चाइल्ड को भी अगर अपने साथ रख रही है उस डिवोर्स के सिचुएशन के दौरान, तो छोटा बच्चा है तो उस समय वो मेंटेनेंस का पीरियड बढ़ा के 2 साल तक किया जा सकता है, और फिर उसमें कुछ प्राविधान मेहर के हैं, और कि अगर जैसे जो मुस्लिम महिला है वो अपनी प्रॉपर्टी जो भी उसको शादी होने से पहले जो उसके नाम थी या उसके बाद जो उसके नाम पर रही वो उसके पास ही रहेगी, ऐसा नहीं कि डिवोर्स के बाद अगर हस्बैंड साइड से आई है तो हस्बैंड को वापस हो जाएगी, इस तरह के इसमें प्राविधान। पर वो मेजरली सिर्फ शाहबानो जजमेंट को ओवरटर्न करने का एक तरीका था, और सिर्फ इद्दा पीरियड में ही मेंटेनेंस मिले इस वजह से ऐसा था, सिर्फ मुस्लिम पर आधारित था 1986 का कानून, उससे कोई लेना देना किसी और धर्म का कोई सरोकार उससे नहीं था।
जो मेंटेनेंस की बात है कि इसमें तय सीमा होती है कि इतना ही मिलेगा?
नहीं, इसमें कोई तय सीमा नहीं होती, किसी भी जो वाइफ को अगर मेंटेनेंस देनी है तो वाइफ मेंटेनेंस सिर्फ कि वो जिस लिविंग कंडीशन में रही है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका था, उसके हस्बैंड की जितनी कैपेसिटी थी तो उस हस्बैंड के हिसाब से ही उसको मिलेगी। जैसे कि इस केस में जो था कि हाईकोर्ट से ऑर्डर 20,000 रुपए की मेंटेनेंस था, जो हम केस किसकी बात कर रहे हैं, और उसको उस तेलंगाना हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था क्योंकि मेंटेनेंस वो 10,000 रुपए ही महीने की देना चाहता। तो इसमें जैसे ये, पर बहुत से ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें मेंटेनेंस लाखों लाख रुपए में भी होती है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हस्बैंड की कितनी इनकम है, कई अलग अलग फैक्टर्स पे बेस्ड होता है कि आउटकम कितना मेंटेनेंस रहेगा।
इस निर्णय से क्या ये समझा जा सकता है कि कुछ मुद्दे जो हैं जाति और धर्म विशेष से ऊपर उठकर अब देखे जाने की जरूरत है, और बार बार इस प्रकार के मुद्दे जब न्यायालय में आते हैं तो समान नागरिक संहिता यूसीसी की बहस को ये और जोर दे देते हैं?
इसलिए ही यूसीसी की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब मैंने आपको जो ये समान नागरिक समान जो समानता महिलाओं के बीच होनी चाहिए वो तो है ही है, उसके साथ आप देखें कि कोर्ट्स को भी काफी ज्यादा इसमें जो है डिस्क्रिपेंसी का सामना करना पड़ता है, कि आप देखें कि कोई जज है जो उसी सेम सेट ऑफ कंडीशन सेम सेट ऑफ की एक डिवोर्सी महिला है उसके सामने सामने ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, ये परेशानियां हैं, उसी में अगर कोई महिला मुस्लिम है तो उसको एक अलग तरह का जजमेंट निकालना होगा, कोई महिला अगर हिंदू है तो उसको अलग तरह का जजमेंट। तो ये सारी जो डिस्क्रिपेंसी है, अगर जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे तो क्योंकि आप देखें कि किसी का मेंटल उस समय सिचुएशन, अगर जज को भी डिसीजन लिखना होता तो उनको भी ये सब चीज सोचनी होती है, तो आप देखें कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो उन्हें हर बार अलग अलग ढंग से नहीं सोचना होगा, वो सबके साथ जस्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा लगता होगा कि इस केस में जस्टिस हो गया, जस्टिस कानून के साथ हो गया होता है कि आपने जो कानून में लिखा है वो आपने उसके साथ न्याय कर दिया जो लिखा है, पर क्या वास्तविकता में न्याय उस महिला के साथ हुआ है जिसको एकदम से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया गया, ना उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ना रेजिडेंशियल सिक्योरिटी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद कम से कम उन दो मुद्दों पर जो कि डिवोर्स होने के बाद सबसे जरूरी, रहने की व्यवस्था और आपका घर चलाने के लिए खर्चा, वो चीजें जो कम से कम इस चीज में निपटान हो सकेगा सही ढंग से चल सके।
इस निर्णय में पीठ ने कहा था कि ये निर्णय सिर्फ मुस्लिम महिलाओं पर नहीं बल्कि सभी विवाहित और तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होगा, तो कैसे इसे किसी धर्म विशेष से ना जोड़कर इसे एक यूनिवर्सल वर्डिक्ट के रूप में देखना चाहिए?
जी, ये यूनिवर्सल वर्डिक्ट ही है, क्योंकि बाई चांस इसमें जो है अभी तक मुस्लिम महिलाओं ने इतना ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट में कभी इस चीज को चैलेंज नहीं किया था, अदरवाइज हिंदू या बाकी किसी धर्म की महिलाओं के लिए तो ऑलरेडी वो कानून है 125 है, और सारे लोग उस चीज को मान रहे हैं, बस सिर्फ मुस्लिम लोगों में उस चीज को लेकर के था क्योंकि उनके वो अपने पर्सनल लॉ से गवर्न थे, तो सिर्फ वहीं पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया तो उसके बाद से वो सारा कुछ भी एक समांतर हो गया, वहां पर भी कोई इस चीज में एटलीस्ट डिस्क्रिपेंसी नहीं है।
इस कार्यक्रम में जुड़ने और चर्चा में भाग लेने के लिए यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ते के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता देवव्रत यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR @gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।